नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज गुरुवार है, हिंदी क्लास का दिन है, है ना, और नरसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि है। सब हिंदी वाले सुंदरानंद इधर जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, वो अंग्रेजी वालों का जगह है। क्या अमेरिका जाने का प्रयास अभी से कर रहे हो लोग पीछे बैठ करके? आगे आओ, आगे भूषण, कौन सुन नहीं रहे हो? सब नए भक्त आगे जाओ, इधर आओ। पुरुष भूषण कौन है, क्या नाम उसका? नेपाल वाला, नेपाल से इंडिया आया, अब यहां से अमेरिका जाएगा। तो आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण से सातवां स्कंध अध्याय 9 और श्लोक संख्या 44। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थना से शांत करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेण देवा मुनयः स्वविमुक्तकामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा न एतान् विहाय कृपणां विमुक्षे एकः अन्यं त्वत् अस्य शरणं भ्रमतः अनुपस्से। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्त कामा प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्त कामा मौनं चरन्ति विजनेन पराशनिष्ठा मौनं चरन्ति विजनेन पराशनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणा विमुक्ष एको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतोनुपस्से। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्त कामा प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्त कामा मौनं चरन्ति विजनेन पराशनिष्ठा नैतान् विहान कृपणा विमुक्ष एको नैतान् विहाय कृपणा विमुक्ष एको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतोनुपस्से। पढ़िए पढ़िए बगल। प्रायेण प्रायः सभी मामलों में सामान्तया देव हे ईश्वर मुनयः बड़े बड़े संत पुरुष स्व अपने अपने विमुक्त कामः इस भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक मौनम मुक भाव से मौन भाव से चरन्ति विचरण करते हैं हिमालय के जंगलों में जहां भौतिकवादियों के कार्यकलापों से कोई संपर्क नहीं रहता बिजने एकांत स्थान में जहां कोई न हो न नहीं परार्थनिष्ठा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्यों के लिए काम करने में रुचि रखने वाला न नहीं एतान इन विहाय छोड़कर कृपणान मूर्खों तथा धूर्तों को जो मनुष्य जीवन का लाभ न जानते हुए इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं विमुक्षे मैं मुक्त होना और भगवत धाम लौटना चाहता हूं एक अकेला न नहीं अन्यम दूसरा त्वत आपके लिए अस्य इसके शरणम शरण भ्रमतः ब्रह्मांड भर में घूमते और भटकने वाले जीवों को अनुपस्से मैं देख रहा हूं अनुवाद और तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हे भगवान नरसिंह देव मैं देख तो रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक हैं किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते किंतु जहां तक मेरी बात है मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता है मैं जानता हूं कि कृष्ण भावना अमृत के बिना और आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूं तात्पर्य यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना ही पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्या नहीं है क्योंकि उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावना में स्थित रहना है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है अतएव प्रहलाद महाराज ने कहा नैवो दिजे पर दुरत्या वैतरण्या हे श्रेष्ठ पुरुष मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हूं शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता इसकी पुष्टि भागवत महापुराण के सातवें स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 में हुई है नारायण परासर्वे न कुतश्चन न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनी दर्शिन। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग मोक्ष तथा नरक एक से ही हैं, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मी जन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं, किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं होती। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। प्रकाश जी दर्शन नहीं करोगे क्या? पूरा हो गया? कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है या वह श्रेष्ठ भक्त है, और वह अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके। भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो, प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में साझा झांसा देने के पक्ष में नहीं होता। धोखा, झांसा मतलब धोखा। प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावनामृत जागृत करने में रुचि रखता है। अच्छा, ये नया वाला है, वेरी गुड, ये अच्छा है हिंदी। क्यों मैं झांसा सब पढ़ा तो मैं समझ गया कि प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यम तुदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्से। मैं जानता हूं कृष्ण भावनामृत के बिना, अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावना का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र करता है, न ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते, यह अपितु प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता के शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य के शिक्षाओं के विषय में अस्वस्थ करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? यह अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता के शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है, यही हरे कृष्ण आंदोलन का प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म अध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निर्माय सेते यदमूषुपुरुषम् भुक्ते गुणां षोडश षोडशात्मकम् सोलम् कृषिष्टम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रायेण देव मुनयः सुमुक्तमा कामः मौनम् चरन्ति विजने नपनार्थनिष्ठः नयतान् विहाय कृपणा मुक्ष एकहो नान्य तदस्य शरणम् भ्रमतोऽनुपश्ये। नरसिंह भगवान की जय। आज का बड़ा ही शुभ तिथि है, भगवान सिंहदेव प्रहलाद महाराज के माध्यम से ये शिक्षा देने के लिए आए कि समस्त भक्तों का वे रक्षा करते हैं जो भक्त उनके शरणागत होते हैं। शरणागति के 6 अंगों में से एक अंग है अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। यह हमें विश्वास हो जाए और इस विश्वास का हम पालन करें कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे तो कृष्ण रक्षा करेंगे। ये विश्वास हो जाए और इसका हम पालन करें तो शरणागति के इस अंग को प्रतिपादित करने के लिए कृष्ण आए नरसिंह भगवान के रूप में। यह जो 7वां स्कंद है भागवत महापुराण का जो 7वां स्कंद है उस 7वें स्कंद में भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव का कथा का वर्णन किया गया है। पूरे भागवत महापुराण में दो ही स्कंद ऐसे हैं जहां पर एकराट छत्र है, एक है 7वां स्कंद और एक है 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है, एकराट एकमात्र कृष्ण की लीलाओं का, अन्य कोई नहीं। और इस 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के चरित्रों का वर्णन किया गया है, शुरू से लेकर के अंत तक पूरे भागवत महापुराण में दो ही ऐसे स्कंद, दो ही ऐसे चरित्र हैं, एक भक्त चरित्र और एक भगवान चरित्र। अन्य स्कंदों में देखा जाए, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद छोड़िए, तृतीय स्कंद में देखिए, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय, उससे पहले उद्धव और विदुर, बार में उधुर विदुर मैत्रेय, और इस प्रकार से भगवान के अवतार का उसमें वर्णन हुआ। वहां पर भगवान कपिल देव के रूप में आए, उनका वर्णन हुआ। चौथे स्कंद में देखा जाए तो कई एक प्रसंग हैं। चौथे स्कंद में ब्रह्मा जी का वर्णन हुआ है, सृष्टि का वर्णन हुआ है, महाराज प्राचीन बरही का वर्णन हुआ है, ध्रुव महाराज का वर्णन हुआ है। पांचवें स्कंद में देखा जाए तो नरकों का वर्णन हुआ है, भरत चरित्र का वर्णन हुआ है, रघुगणों का वर्णन हुआ है, ऐसे ऐसे वर्णन हुआ है। छठे स्कंद में देखा जाए तो आज आमिल का पहले वर्णन हुआ, वृत्रासुर का कथा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सातवां स्कंद एक ऐसा स्कंद है जिसमें एक राड छत्र छाया है भगवान नरसिंहदेव का प्रहलाद महाराज पर। आठवें स्कंद में भी प्रायः बलि महाराज का ही वर्णन है, लेकिन उसमें भी कुछ और वर्णन है। नौवें स्कंद में भगवान श्री राम का, महाराज सत्यव्रत का इत्यादि वर्णन है। तो दो ही स्कंद ऐसे हैं भागवत महापुराण में जहां पर एकराट छत्र छाया है भगवान का, दसम स्कंद में उनके लीलाओं के रूप में और सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज की लीला के रूप में। तो इस सातवें स्कंद में पूरा 15 अध्याय है और 740 श्लोक हैं। इसमें से अध्याय 2 से 10 के बीच में यानी 9 अध्यायों में और 460 श्लोकों में प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान के संबंध में डायरेक्ट वर्णन किया गया, इनके चरित्रों का वर्णन किया गया है। इन्हीं 15 अध्यायों में से 9 अध्याय, जिसमें से टोटल 55 श्लोक हैं और उसमें से एक 44वां श्लोक है जिसमें प्रहलाद महाराज के प्रार्थनाओं में से एक बड़ा ही सुंदर प्रार्थना यह है। प्रभुपाद जी बहुत बार कोट किए हैं इस प्रार्थना को और इसके पहले वाले प्रार्थना को। ये प्रहलाद महाराज का प्रार्थना है और उसी पर हम लोग ये विचार कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जब सुने कि किस प्रकार से भगवान इंद्र का पक्ष लेकर के और वृत्रासुर का वध किए, जो कि वृत्रासुर इतने महान भक्त थे, वृत्रासुर का उद्गार 4 श्लोकों में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। अयम हरे तौ पादैक मूलम दासानुदासा भवितोऽस्मि भूयः। इस श्लोक से शुरू होकर के और उद्गार प्रकट जब वृत्रासुर किए तो परीक्षित महाराज का दिल भर गया और भरे हुए दिल से परीक्षित महाराज प्रश्न किए कि हाय हाय, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानाम अधित विषम यथा। परीक्षित महाराज बड़े डिस्टर्ब हो गए। एक इंद्र जो कामी है, लंपट है, बार बार सबको परेशान करता है, उसके रक्षा करने के लिए भगवान इतने महान भक्त जो कि पूर्व जन्म में महान राजा थे, संकर्षण देव की कृपा से पहले चित्रकेतु थे, बाद में वृत्रासुर बने, उन पर एक नहीं अनेक प्रकार का कृपा हुआ, संकर्षण देव का कृपा हुआ, तदोपरांत माता सती का, पार्वती का कृपा हुआ, ऐसे कृपा प्राप्त महान वृत्रासुर को भगवान ऐसे मरवाए। तब यहां पर परीक्षित महाराज प्रश्न कहते हैं, समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान तो सबके प्रति सम है, सबके प्रति सम है, सबके प्रिय हैं और सबके शुभचिंतक हैं, सुहृद हैं। भगवान गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्टि न प्रिय, मैं सबके प्रति समान हूं, मेरा कोई द्वेषी नहीं है और मेरा कोई प्रिय नहीं है। प्रहलाद महाराज वही बात कह रहे हैं, कृष्ण भावना भावित बात कह रहे हैं। सॉरी, परीक्षित महाराज कोई डाउट नहीं था, लेकिन जानते थे कि लोग डाउट करेंगे, इसलिए हम लोगों के डाउट का निराकरण करने के लिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन, तीन बात कहते हैं, भगवान सबके लिए सम है, भगवान सबके प्रिय हैं और भगवान सबके सुहृद हैं, सबके मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। कहते हैं भगवान स्वयं सबके लिए हैं। भगवान गीता में अन्यत्र कहें, भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना, मैं सबका सुहृद हूं। वही बात यहां पर, सुहृदम भूतानाम, समस्त प्राणियों के लिए। जब ऐसा है, जब यही बात सत्य है, तो उनके व्यवहार में विषमता क्यों दिखाई पड़ रही है? इंद्रस्य अर्थे, इंद्र के लिए कथम, आप हमें बतलाइए, हमारे शंका दूर कीजिए, शंका को दूर कीजिए। कथम दैत्यानाम अवधितः, ऐसा क्यों उन्होंने किया, ऐसा पक्षपात भगवान ने क्यों किया, जो सबके सम हैं, सबके सुहृद हैं, सबके शुभचिंतक हैं, ऐसे भगवान पक्षपात कर करके, इंद्र का पक्ष लेकर के और दैत्यराज चित्रकेतु को भगवान क्यों मरवाए? विषम यथा, ऐसा पक्षपात भगवान ने क्यों किया, विषम व्यवहार क्यों किया? बड़ा सुंदर प्रश्न था। इस प्रश्न को सुनकर के परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराजम हरे श्रित अद्भुतम यद भगवता महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। हे महाराज परीक्षित, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। साधु पृष्ठम महाराज, महाराज आप बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न से भगवान हरि के अद्भुत चरित्र का वर्णन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। हरे चरित अद्भुतम यद भगवत महात्म्य, ये भागवत महात्म भगवान और भगवान के भक्तों का जो लीला है, उसके महात्म को वर्णन करने का सुअवसर मिला है। ऐसा कथा का किया जाए, भगवान से संबंधित कथा किया जाए और सुना जाए, तो वह कथा क्या करता है? भगवत भक्ति वर्धनम, हमारे भगवत भक्ति में वृद्धि लाता है, हमारे भगवत भक्ति को बढ़ाता है। गीयते परमं पुण्यम ऋषि भी नारद आदि भी, अरे ऐसे लीला कथाओं का तो गान करते रहते हैं नारद आदि ऋषि लोग। नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम, मैं भगवान कृष्ण को नत्वाय मतलब प्रणाम कर करके, कृष्णाय मुनये कृष्ण द्वैपायन ऋषि व्यास देव को मैं प्रणाम कर करके, नारायणम नरस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम दैवीम सरस्वतीम व्यासम दो जय मुदीर ए कृष्णाय मुनय मैं व्यास देव को प्रणाम कर करके, कथैस्से हरि कथा भगवान हरि के उस कथा को मैं कहूंगा। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहे कि भगवान वास्तव में सबके सुहृद हैं, लेकिन व्यक्तियों को उनको देखने में अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति कोई सत्गुण में है, कोई रजोगुण में है और कोई तमोगुण में है। तो अपने अपने गुणों के प्रभाव से व्यक्ति भगवान और भक्तों के संबंध को उस रूप से दिखता है। जो सत्गुण में है वो एक भाव से देखेगा, जो रजोगुण में है दूसरे भाव से देखेगा, और जो तमोगुण में है वह तीसरे भाव से देखेगा। निर्गुणों अपि ही अजो अव्यक्तो भगवान प्रकृति है पर, लेकिन भगवान कैसे हैं, निर्गुणों अपि इस गुणों से परे हैं, यानी जो व्यक्ति संसार के इन गुणों में रहेगा तब वे गुणों के प्रभाव से भगवान को उस रूप में देखेगा, लेकिन भगवान कैसे हैं, वे तो निर्गुण हैं। तो उन भगवान को इन गुणों से हम नहीं जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, भगवान प्रकृति है पर, भगवान प्रकृति से परे हैं। जब हम प्रकृति से परे हो जाएंगे, प्रकृति के गुणों से परे हो जाएंगे, तब हम भगवान को जान सकते हैं, तब भगवान को जान सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो तुम बात कह रहे हो ठीक ऐसा ही प्रश्न हमारे सामने एक बार आया था। इस कथा को मैंने सुना है, एक समय की बात है। वो एक कथा बतला रहे हैं, एक समय राष्ट्रीय जग में जब युधिष्ठिर महाराज जब राष्ट्रीय जग कर रहे थे, सब देश विदेश के राजा महाराजा लोग आए हुए थे। अग्र पूजा किसकी की जाए, जब सोएगा तो तुम्हारा पूजा थोड़े होगा, जगो। अग्र पूजा किसकी की जाए, जब यह बात आया तो सहदेव ने सलाह दिया कि कृष्ण का अग्र पूजा होना चाहिए। उस पर जब भगवान का पूजा संपन्न हो गया, तब पूजा से पहले ही शिशुपाल भगवान के विषय में बहुत उल्टा सुलटा कहना शुरू किया। भगवान बहुत सहन किए, उसके 99 अपराधों को भगवान माफ कर दिए। जब 100वां अपराध किया तो भगवान उसके गले को काट दिए अपने सुदर्शन चक्र से, और देखते देखते ही उस सुदर्शन चक्र से कटा हुआ गला था ही शिशुपाल का आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो गया, भगवान के चरणों में लीन हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अत्र उद्धृतः पूर्वम इतिहासम सुरसिनः प्रत्यमहाकर्तो राजन पृच्छते अजातशत्रवे। अजातशत्रवे महाराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा जाता है, उन्हें कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ था। तो वे अजात शत्रु ने एक बार पूछा था, कहां पर, राजस्व जग में, महाकर्तो महाराष्ट्र जग हो रहा था, किससे पूछा था, सुरसिणा सुरों के ऋषि यानी देवर्षि नारद से। ये बड़ी पुरानी इतिहास है, हे महाराज परीक्षित मैं उसी को बतलाता हूं। यहां पर देखिए, जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना हो तो शारीरिक संबंध से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को आध्यात्मिक संबंध से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे पर तुम्हारे दादा ने प्रश्न किया था, दादा ने प्रश्न किया था, नहीं कहे, कहते हैं अजात शत्रु राजन, हे महाराज अजात शत्रु यानी महाराज युधिष्ठिर ने किया था। दृष्टवा क्या प्रश्न किए थे, वह प्रश्न है दृष्टवा महाअद्भुतम राजा राजसु ये महाकृतौ वासुदेवी भगवती साजुज्य चेदी भूभुज। कहते हैं जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा दृष्टवा महाअद्भुतम, ये महाअद्भुत चीज देखा उस राजस्वीय जग में, क्या देखा वासुदेवी भगवती साजुज्य, साजुज्य मुक्ति को प्राप्त किया कौन, चेदु भूभुज, चेदी वंश का चेदी नरेश शिशुपाल ने साजुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। वैष्णव लोग साजुज्य मुक्ति नहीं चाहते हैं, कितने प्रकार की मुक्तियां हैं, पांच प्रकार के, कौन कौन, सामीप्य और साजुज्य, ठीक है पांच प्रकार की मुक्ति है, उसमें से साजुज्य मुक्ति को कैवल्य नरक आयते, नरक के समान मानते हैं, और सब ठीक है लेकिन कैवल्य को नहीं। प्रश्न उठता है कि भगवान के शरीर में यह क्यों विलीन हो गया शिशुपाल, क्योंकि ये अंतिम जन्म था जय और विजय का, तीन जन्म उन्होंने लिया था, प्रथम जन्म हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म था शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये लोग भगवान में विलीन होकर के भगवान के साथ में भगवान के धाम गए, इसलिए दोनों शिशुपाल और दंतवक्र दोनों विलीन हुए हैं जहां के हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष और रावण कुंभकर्ण, और ये लोग विलीन नहीं हुए हैं। भागवतम में वर्णन आया है इन दोनों के लिए, ये दोनों विलीन हुए थे क्योंकि भगवान के साथ गए थे, पीछे नहीं गए, साथ में द्वारपाल थे ना, तुमको वहां रहना था। ये साजुज्य शब्द का व्याख्या किया गया है। मैं अब इसे लास्ट मंथ ही भागवत सप्ताह किया जोधपुर में, प्रहलाद महाराज का चरित्र था, तो मेरे पास माल पानी ज्यादा है इसके विषय में, तो थोड़ा इसलिए मैं भूमिका लेकर के चल रहा हूं। तो जीव गोस्वामी कहे कि साजुज्य मुक्ति वैसे प्राप्त किया। तत्रासिनम सुरऋषि राजा पांडु सुतः कृतौ प्रवक्ष विस्मितान मुनिनाम प्रमादिनाम, समस्त मुनियों के बीच में यह देख करके युधिष्ठिर महाराज यह प्रश्न किए, क्या प्रश्न किए, परीक्षित महाराज कान खोलकर सुन रहे हैं कि क्या प्रश्न किए। तो कहते हैं अहो अति अद्भुतम ही एत दुर्लभ ऐकांतिनामपि वासुदेव परितत्वे प्राप्तिश्चेदस्य विदुषः, यह द्वेषी विद्वेषः विशेष द्वेषी एनवियस पर्सन यह चेदी नरेश शिशुपाल किस प्रकार से परतत्व परम भगवान वासुदेव के चरणों में वह दुर्लभ मुक्ति ही अति दुर्लभम एकांति नाम अभी, जो एकांति लोग जो साधु महात्मा हैं जो भक्त लोग हैं उन लोगों के भी अति दुर्लभ है, उस अति दुर्लभ मुक्ति को ये कैसे प्राप्त किया, ये कैसे प्राप्त किया। एतद् वेतुम इच्छा हम सर्व एव वयम मुने भगवन निंदयः वेनो द्विजे तमसी पातितः, हे गुरुदेव हे नारद मुनि यह प्रश्न मेरा ही नहीं है, यहां जितने ऋषि लोग हैं तो वयम मुने हैं, अहम अवाम वयम, मैं अकेला नहीं हूं, हम सब लोग ये जानना चाहते हैं। एतद् वेदितुम इच्छामः, हम लोग जानने का इच्छा रखते हैं, हम जानना चाहते हैं सर्व एव वयम मुने, सर्व सब कुछ सम्यक रूप से सब लोग, एव मतलब निश्चय ही, वयम मतलब हम सब, मुने हे मुने आप कृपा करके बतलाइए कि यह व्यक्ति जो था भगवान का निंदा पानी पी पी करके निंदा करता था, यह शिशुपाल और दंतवक्र पानी पी पीकर भगवान को गाली देता था, यानी इतना फास्ट बोल रहा था, 100 अपराध करना था उसको, तो प्यास लग, हम लोग एक घंटा कथा कहते हैं तो प्यास लगता है, पानी रखते हैं यहां पर, है ना, पानी पीना पड़ता है। शिशुपाल घंटों तक भगवान का निंदा किया, भगवान निंदयः बेनः, कहते हैं एक तरफ बेन ने भगवान का निंदा किया, भगवान निंदया बेनो द्विजे तमसी पात की, बेन ने जब निंदा किया तो वो कहां गया, नरक में गया, बेन भगवान का निंदा किया तो नरक में गया, लेकिन यह शिशुपाल दम घोष सुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् सम प्रतमर्षि गोविंदे दंतवंक्रश्च दुर्मति। कहते यह दम घोष का बेटा, आप समझ सकते हैं ज्योतिषी महाराज कितने गुस्सा में थे, दम घोष का बेटा, जो दम घोष थे ज्योतिषी महाराज के मौसा थे, ये मौसा का बेटा था शिशुपाल, मौसेरे भाई थे और कृष्ण जो थे ममेरे भाई थे, नाता थोड़ा जोड़ लीजिए आप लोग, तो कृष्ण ममेरे भाई थे शिशुपाल दंतवक्र के, और युधिष्ठिर आदि पांडव गण मौसेरे भाई थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा हुआ होगा युधिष्ठिर महाराज। पहले लोग अपने स्त्री अपने पति का नाम नहीं पुकारती थी, बच्चे अपने बाप मां का नाम नहीं पुकारते थे, आजकल तो इजी हो गया है, पत्नियों को अच्छा लगता है पति को अपने नाम से पुकारना है, और बच्चे भी अपने बाप मां को डायरेक्टली नाम नहीं कहते हैं, कहते हैं मिस्टर गुप्ता, मिस्टर सचे सच, मिस्टर सचे सच, मिस्टर थोड़ा कहते हैं है? पहले बाप का नाम, पत्नियां होती थी अपने पति का नाम, पति को पुकारना होता तो मान लो उसके बेटे का नाम राम है तो कहेगी राम के पिता, यही कहती थी ना, राम के पिताजी इधर आइए, यही कहती थी। अब राम के पिता का नाम श्याम है तो नहीं कहे श्याम इधर आओ, आजकल ऐसे कहती है श्याम इधर आओ, पर कहते हे राम के पिताजी इधर आइए, ऐसा कहते। एनीवे यहां पर युधिष्ठिर महाराज दमघोष का नाम लेकर कहते हैं, कृष्ण चरणदास यहां पर हैं कथा में नहीं है, मुझे याद है मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ रहा था और सुबह सुबह दातुन कर रहा था, वो आए और हमको बड़े जोर से मारे कि तुम्हारा परीक्षा है और तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो मैं उनको चैलेंज किया और उनका नाम लेकर के चैलेंज किया, उनका नाम लेकर के कि जब भी मेरा नंबर आएगा आपसे ज्यादा आएगा, चिंता मत कीजिए, उनका नाम लेकर के। उसके बाद कई एक दिन तक हमसे वो बात नहीं किए थे, बहुत समय तक, बाद में पता चला मुझे कि उनका मैं नाम लिया मतलब लक्ष्मण रेखा पार कर गया, अब उसके पास कोई शक्ति नहीं रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कितना गुस्सा होगा कि कह रहे हैं दम घोष सुतः, हे दम घोष का बेटा, यह दम घोष का, दम घोष जो थे उनके मौसा जी थे, कहते यह दम घोष का बेटा पापी है, तो मानो करें कब से पापी हैं, कहते हैं आरभ्य कलभाषणात्, अरे जन्म से ही आप पापी हैं, जन्म लिया, कलभाषण मतलब टूटा फूटी तुतला बोली, जब तुतला बोली बोल रहा था तब से ही गोविंद का निंदा करना शुरू किया। कैसे कैसे करता था, संप्रति और मसीही ईर्ष्यालु भाव से, जैसे बचपन में करता था वैसे आज भी, और यही नहीं दंतवक्रश्च दुर्मति, ये दमघोष का बेटा शिशुपाल और दंतवक्र, ये दोनों पानी पी पी करके बचपन से ही कृष्ण को गाली देते रहे। अरे इन लोगों को तो नरक में जाना चाहिए, इनके जिह्वा पर कोर क्यों नहीं छा गया। चित्रो न जातो जिह्वायाम न अंध विवसत तमह, इन्हों तो कहां जाना चाहिए, इन्हें तो नरक में जाना चाहिए। इनके जिह्वा पर कोर क्यों नहीं, स्वित्रो हो न जातो जिह्वायाम। स्वित्रो मतलब श्वेत कुष्ठ, उजला कोड़ होता है ना, तो ये उजला कोड़ क्यों नहीं फूट गया इनके जिह्वा पर, इन लोगों को नरक में जाना चाहिए। अरे नरक में जाने के बजाय ये तो भगवान के शरण में चले गए, ये तो भगवान के पास चले गए। इस प्रकार से युधिष्ठिर कहते हैं, एतद् भ्राम्यति मेह बुद्धि दीपार्चिरो वायुना। हे भगवान, यह वातावरण देख करके, यह प्रसंग देख करके मेरा मन लपलपा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से, कितने लोग सो रहे हो हाथ उठाओ, सोने वाले हाथ उठाएंगे, थोड़े सो रहे हैं। तो कहते हैं दीपार्चिरो वायुनाम, जिस प्रकार से दीपक, दीपक है, 9 बज गया, अरे लो अभी तो भूमिका बना रहा हूं मैं, आज फास्टिंग है ना, चलेगा ना, कोई तकलीफ नहीं, कोई उठना मत, ठीक है ना, बैठे रहो। अब ये भूमिका चल रही है, अभी कथा नहीं शुरू हुआ है। जिस प्रकार से दीपक है और हवा चल रहा हो, तो हवा से दीपक हिलता है। पहले जमाने में ये दीपक हिलने का बहुत साध्य था, दीपक हिलने से पता चलता। जैसे कोई स्त्री है, विवाहिता स्त्री है, यदि वो दीपक का लौ जो है हिल रहा है, तो समझती है कि मेरे पति किसी संकट में है। और यदि वो दीपक बुझ गया तो स्त्री रोने लगती थी कि मेरे पति का देहांत हो गया, और होता था। ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य घटना है। वैसे ही जब मन में भ्रम आता है तो मन इधर उधर जाता है दीपक के लौ के समान, और जब सुनने के बाद ही भ्रम ना आए तो समझ लो कि दीपक बुझा हुआ है, भक्ति खत्म हुई है, पता नहीं चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि आप कृपा करके हमें बतलाइए। जब इस प्रकार से परीक्षित युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए, तब अब कथा शुरू होती है। तब प्रथम अध्याय में ही जय और विजय का कथा बतलाए नारद जी युधिष्ठिर महाराज को। एक कथा आप सब लोग जानते हैं कि कैसे चतुष्कुमारों ने श्राप दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप वे असुर बने थे, और उन्हीं में से जो प्रथम जो था वह था हिरणाक्ष का वध। हिरणकश्यपु और हिरणाक्ष होकर के आए थे, उसमें हिरणाक्ष का वध था। दूसरे अध्याय में इसका वर्णन किया गया कैसे भगवान वराहदेव हिरणाक्ष का वध किए और हिरणाक्ष के वध से कुपित होकर के सर्वप्रथम हिरणकश्यपु आकर के अपने सगत संबंधियों कुटुंबियों को आश्वासन दिया। बड़ा ही सुंदर आश्वासन वह है, बिल्कुल भगवत गीता का ज्ञान दिया, बिल्कुल ज्ञान से महाराज सूर्य का कथा बता बता कर कैसे हिरण्यकश्यप को बतलाया। और हिरण्यकश्यप सोचा कि हमारा भाई इतना बलवान था, उसको मारना समान चीज नहीं था, जो उसको मारा है इसका मतलब कि उससे और बलवान है। जो विष्णु है तो विष्णु बलवान है, तो पहले के लोग भी जानते थे कि बल प्राप्त करना है तो जिम्नेजियम नहीं ज्वाइन करना चाहिए। पहले को भी जानते थे कि बल प्राप्त करना है तो तपस्या करना चाहिए। ये सतयुग था ना, सतयुग में कृति अध्याय तो विष्णु, सतयुग में लोग तपस्या करते थे बल प्राप्त करने के लिए। और कलयुग में बल प्राप्त करना हो तो क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए। कौन तपस्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। न कि जिम्नेजियम ज्वाइन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु जिम्नेजियम ज्वाइन करने नहीं गया, उसने सोचा मुझे बल प्राप्त करना है तो बल दिया जाता है। कौन देता है? तो संसार में हमारे समझ से ब्रह्मा जी ही बलशाली। तो ब्रह्मा जी के प्रसन्नता के लिए हिरण्यकश्यपु तपस्या किया और तपस्या के परिणाम स्वरूप ऐसा तपस्या किया कि सब रोम जितने छिद्र थे सब भर गए उसके तप से। जब सब कुछ भर गया, जैसे आपका कोई नाक और मुंह बंद कर दे 5 मिनट के लिए तो कैसा फील करोगे? नाक और मुंह दोनों सफोकेशन होगा, मर जाओगे। सब देवता लोग तड़फड़ाने लगे, अब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि हे प्रभु, आपके लिए तपस्या कर रहा है, हम में से कोई जाएगा प्रसन्न नहीं होगा, विष्णु भी जाएंगे प्रसन्न नहीं होगा, आपको ही जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग तो परेशानी में डालना होता तो हमको डालते हो, मजा मारना है तुम लोग अपने मारते हो, ठीक है जा रहा हूं। बेचारे ब्रह्मा जी गए, हिरण्यकश्यपु खुश हुआ, वर्णन किया गया उसका तपस्या जब करना है, भोजन करना है तो देह गेह को छोड़ना पड़ेगा। जब देह के सुख सुविधा को देखते हुए भजन करेंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, सबके लिए मैं कह रहा हूं, तब भजन नहीं होगा। यदि मंगला आरती आना है, क्लास गुरु पूजा आना है, तपस्या है, गर्मी के दिन में पंखा नहीं चल रहा है, कुछ भक्त लोग लॉबी में बैठे हैं, बोलते मैं वहीं सुनूंगा, वहां गर्मी है, वो सुन रहे हैं, शायद सुनते होंगे इस बात को, ये तपस्या सहन करना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ऐसा तपस्या किया कि उसका जो शरीर था वो दीमक लोग खा गए थे, शरीर भी नहीं रह चुका था, शरीर का थोड़ा भी परवाह नहीं किया, पत्नी पुत्र परिवार किसी का परवाह नहीं किया और जाकर तपस्या किया। जब किसी का परवाह न कर केवल कृष्ण का परवाह करेंगे तब कृष्ण प्रसन्न होंगे हमसे। तो भजन करना है तो सब कुछ को हम नहीं कहते हैं छोड़ कर करो, जोड़ कर करो, छोड़ो मत जोड़ो, जोड़ कर भजन करना, न कि बैंक बैलेंस घर पर रख दें गर्ग जी और बाद में भजन करने आए, नहीं, वो सब ले करके आना चाहिए, जोड़ना चाहिए, छोड़ करके भजन नहीं करना चाहिए, जोड़ करके है नहीं। मुकुंदा प्रभु कुछ बोल रहे हैं, इन्हें बाद में पूछ लेना आप। तो भजन करना चाहिए तो सब चीज से आसक्ति से अनासक्त विषयान, अनासक्त होकर के तब नाम का परिणाम प्राप्त होगा, भजन का परिणाम होगा। और हिरण्यकश्यपु ने किया, इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बड़े खुश थे, कहे कि बेटा वर मांगो। तो उसने खूब वर मांगने का प्रयास किया अपने बुद्धि से पहले तो अमर होने का। ब्रह्मा जी कहे मैं ही स्वयं नहीं अमृत में कैसे अमर कर सकता हूं। तब हिरण्यकश्यपु अपना बुद्धि लगाया और खूब वर मांगा कि न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न दिन में, आप लोग जानते हो सब, गिन सकते हो कितना। तो इसका वर्णन 3rd अध्याय में किया गया है। और जब बल प्राप्त हो गया, जो सत्गुणी व्यक्ति होता है उसे बल प्राप्त होता है तो वह दूसरों के कल्याण के लिए करता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसे बल प्राप्त होता है तो दूसरों को दबा करके अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए बल का प्रयोग करता है। और जो तमोगुणी होता है वह अपने बल को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने लिए, दूसरों को तो खत्म करता ही है अपने को भी खत्म कर देता है। उसे पता नहीं, जैसे आप लोग भस्मासुर का था जानते हो ना, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, उसने कहा कि अरे वो तनो नृत्य करते हैं, और उसने कहा कि नहीं नहीं ये भगवान शिव कुछ ही बोल देते हैं तो विश्वास हो रहा है क्या, वो इनके आशीर्वाद का कोई असर नहीं पड़ेगा और करना तुम देख लो स्वयं अपने सिर पर करके। उसको बुद्धि नहीं था, वो तो इंद्रिय तृप्ति में था, देख रहा था सती को इंजॉय करना है, भगवान शिव की पत्नी को इंजॉय करना है, तुरंत सिर पर अपना हाथ रख दिया, अपने को भी खत्म कर लिया अपने को। तो वह नहीं समझता है कि आनंद किस में है, दुख में है कि सुख में। एक कथा है कि एक व्यक्ति था वो जंगल में खड़ा हुआ था, शाम हो गया, एक भद्र व्यक्ति जा रहा था, कहा तू यहां पर क्यों खड़ा है, अब शाम हो गया है, हिंसक पशु लोग आएंगे, शेर इत्यादि आते हैं पानी पीने के लिए, बाघ शेर। कहा कि मैं यहां पर खड़ा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि शेर को मनुष्य का खून बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूं कि वो शेर आ करके पहले मेरा खून पिए, बाद में गांव वालों का खून पिएगा। तो उसे आनंद हो रहा था, गांव वालों को परेशानी हो, और उसके लिए वो अपना शरीर देने के लिए तैयार था, अपना खून पिलाने के लिए तैयार था। तो ये तमोगुणी लोग हैं। तो हिरण्यकश्यपु असुर लोग होते हैं प्रायः रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। तब यह हिरण्यकश्यपु अब अत्याचार करना शुरू किया, समस्त अपने चेले चपाटियों को भेज दिया अत्याचार करने के लिए, जाओ तुम लोग करो, और स्वयं करने लगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो जितना पुआल सूखे घास और फूस का ये महल बना रहा है उसमें एक चिंगारी पैदा हो रहा है जिसका नाम है प्रहलाद। अब प्रहलाद बहुत दिन से हिरण्यकश्यपु तपस्या करने आया था, तपस्या के बाद आया था। प्रहलाद जी बचपन से ही भक्त थे, हालांकि हिरण्यकश्यपु के और भी बड़े पुत्र थे लेकिन प्रहलाद अंतिम पुत्र थे। कहा जाता है हमारे यहां बिहार में पेट पोछवा है, जो मां के पेट को सफाई कर कर गया है, अंतिम संतान है। और वह जो बच्चा होता है बड़ा बाप मां का बड़ा सुहृद होता है। उसके अलावा प्रहलाद जी भगवान के महान भक्त थे। तो धीरा धीर जनक प्रिय प्रिय करऊ, प्रभुपाद जी कल ही कह रहे थे कि जो वैष्णव होते हैं वो सबके लिए रफियन और जेंटिल, दोनों के लिए वो धीर बड़े अच्छे होते हैं। तो प्रहलाद जी बचपन से ही बड़े सुंदर थे, सुशील स्वभाव के थे, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं उनमें देवताओं के समस्त गुण अपने विद्यमान रहते हैं। जो साधु होते हैं वो पूछते हैं हाउ टू डू, और जो असाधु होता है वो पूछता है व्हाई टू डू। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो पूछते हैं व्हाई टू डू, बोलो मंदिर चले व्हाई टू गो टेम्पल, भगवान का नाम लो व्हाई टू चैंट। और जो साधु होगा बोला हाउ टू चैंट, हाउ टू गो टू टेम्पल। तो प्रहलाद महाराज साधु थे, इसलिए अपने पिताजी को सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करना, उनका चरण स्पर्श करना, इसलिए नहीं चमचागिरी कर रहे थे, ऐसा बात नहीं था, ये स्वाभाविक गुण था प्रहलाद महाराज में। जहां की अन्य बेटे थे वो 10 बजे तक सोते थे और बाप को प्रणाम भी नहीं करते थे, प्रहलाद महाराज जल्दी उठ करके जाकर के पिताजी को प्रणाम करना इत्यादि। प्रहलाद महाराज बहुत नरसिंह पुराण में खूब वर्णन किया गया है प्रहलाद महाराज के गुणों का, और भागवतम में वर्णन किया गया है प्रहलाद महाराज के गुणों का। तो हिरण्यकश्यपु के साथ जो संबंध था उस गुणों का वर्णन नरसिंह पुराण में किया गया है, जहां कि भागवतम में वर्णन किया गया है प्रहलाद महाराज का भगवान से जो संबंध था उन गुणों का। तो एक दिन हिरण्यकश्यपु, देखिए नीति शास्त्र के अनुसार जो बाप अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं कराता है वो अपने बच्चों का दुश्मन होता है, यह बात असुर लोग भी जानते थे। भगवान कृष्ण भी जो आए तो वसुदेव जी भेजे कृष्ण और बलराम को संदीपनी मुनि के आश्रम में, भगवान राम गए विश्वामित्र के आश्रम में सीखने के लिए। हिरण्यकश्यपु भी जानता था कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए उनके गुरु थे भृगुवंशी शुक्राचार्य, और उनके दो नौजवान बच्चे थे संड और अमरक। अभी नया नया स्कूल खोले थे वे लोग, तो स्कूल में हिरण्यकश्यपु भेज दिया प्रहलाद को पढ़ने के लिए, आसुरी विद्या देने के लिए। तो कुछ दिन के बाद प्रहलाद आए, तो प्रहलाद तो अपने बाप मां के बड़े प्यारे थे ही। जब आए तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को बैठा करके, पहले तो प्रहलाद महाराज आए तो बड़ा भावुक हुआ हिरण्यकश्यपु, और उनके मस्तक को चूमा। उनके उनको देख करके हिरण्यकश्यपु की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यपु उन प्रहलाद को उठा करके अपने जंघे पर बैठाया और उनके पीठ पर हाथ रख कर कहता है, पुत्र बतलाओ तू अच्छा चीज क्या सीखे हो, तस्सा तुम अच्छा चीज क्या सीखे हो, यह बात हमें बताओ। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा तो प्रहलाद महाराज प्रचार करना शुरू कर दिए कि अच्छा चीज क्या सीखे हैं। कहते हैं, तस्सा धुमन्ने सुरवर्ज देही नाम सदा समुद्धि असद्ग्रहाय हित्वात पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, अच्छा हुआ आपको बुद्धि अच्छा आई, क्योंकि आपने जीवन में पहले बार कोई अच्छा चीज पूछा है। जब अच्छा चीज क्या सीखे हो तो आप जानना चाहते हैं, तो मैं बता रहा हूं। तत्साधु मन ने असुरवर्ज देही नाम, कहते हैं असुरवर्ज देही नाम, पिताजी नहीं कहते हैं असुरवर्ज। असुर लोग अच्छा चीज जानना नहीं चाहते हैं, उनकी नानी मर जाए कोई सुनाएगा तो, वो लोग खराबे सुनना चाहते हैं। डेली रेडियो सुनेंगे, टेलीविजन देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, भागवत पढ़ना उनके बस की बात नहीं है। भागवत पढ़ना अच्छा चीज है, वो नहीं पढ़ेंगे, न्यूज पेपर पढ़ेंगे, रेडियो सुनेंगे, संसारिक बात, ये असुर प्रवृत्ति है। इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं जानता हूं आप रेडियो सुनने वाले हैं, टेलीविजन देखने वाले, पेपर देखने वाले हैं, आपके बुद्धि में ऐसा आ गया, मतलब मैं भी समझता हूं कुछ आपका एडवांसमेंट हुआ है हमारे गुरु जी की कृपा से, संग से। तो कहते हैं आप जान, एक दिन असुर पर जिन्हें ही नाम कहते हैं, असुर लोग ऐसा प्रश्न कहां से कर सकते हैं, लेकिन उन असुरों में आप ऑर्डिनरी असुर नहीं हैं, आप असुरों में श्रेष्ठ असुर हैं, असुर वर्ज दे ही नाम, श्रेष्ठ असुर हैं। तो आप पूछे हैं तो बता रहा हूं। देखिए संसार में पिताजी सब लोग बड़े दुखी हैं, और जानते हैं पिताजी दुखी क्यों हैं? नहीं भाई बताओ क्या दुख का कारण है। कहते हैं सदा समुद्र असतग्रहाय, असतग्रहाय, असत वस्तुओं को ग्रहण कर लिए हैं, पकड़ लिए हैं, और यही उनके दुख का कारण है। अच्छा ऐसा बात है तो बताओ भाई सुख का कारण क्या होगा, सुख को कैसे हो सकता है बताओ। तो पिताजी बताऊंगा वो अच्छा चीज है, सुनना चाहते हैं? हां बिल्कुल। कहते हैं तब पिताजी अब चलिए हमारे साथ में। कहां? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, जंगल में चलिए और भगवान हरि का शरण ग्रहण कीजिए। हित्वात पातम गृहंधकूपम, कहते हैं घर द्वार का क्या हो गया फिर? करे घर द्वार अंधकूप है, यहां भजन थोड़े हो रहा है, भजन हरे कृष्ण मंदिर में होगा। चलो हरे कृष्ण मंदिर में, वनम गतो, चलो वन में चलो। वनम गतो यद हरिमा आश्रय, तो वन में चल करके हरि का आश्रय ग्रहण करो। अब हिरण्यकश्यपु जिम ही हरि का नाम सुना, दिमाग खराब हो गया, उसे गुस्सा आ गया कि बदमाश नहीं का, मैं कोई अच्छा चीज सुनने के लिए बुलाया तुमको, ये तुम्हारी मति किसने खराब कर दिया? तब हिरण्यकश्यपु बुलाया संड अमरक को, कहा क्या बात है पंडित जी लोग, आपके यहां कोई बेस है क्या? उधर हरे कृष्ण वाले वहां रहते हैं क्या? पैंट शर्ट पहनकर कहा जाते हैं आश्रम लगता है, छत में वेश में आकर के लगता है प्रचार कर रहे हैं, हमारे बच्चे का दिमाग खराब कर दिए हैं। प्राणेश्वर दास उधर आए थे कि नहीं कभी? पूछने लगे, ऐसे पूछने लगे। अभी लोग कांपने लगे हिरण्यकश्यपु को देख करके, कांपने लगे, उनका पैजामा ढीला होने लगा। कहे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास सिक्योरिटी टाइट है, यहां कोई नहीं आ सकता है, यहां नहीं आ सकता है, कोई हरे कृष्ण वाले वहां पर नहीं आ सकते। तो कहां से सीखा? तो कहा चिंता मत कीजिए, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं महाराज, छोटा बच्चा है, सिखा देंगे। तब लेकर गए, अब लेकर के गए अब हिरण्यकश्यपु जब पहली बार प्रहलाद जी को देखना चाहता था तो पुत्र के रूप में, पुत्र के प्रेम के रूप में, लेकिन दूसरी बार उसे रात को नींद नहीं आ रही थी कि मेरा बेटा हरि का भक्त बन जाए। स्लीपलेस नाइट थी उसकी, ज्यादा दिन भी नहीं आ, कुछ ही दिन हुआ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी एक ही अध्याय में, अश्लोक अध्याय 4 में ही इसका वर्णन कर दिए हैं। तो जल्दी जल्दी बुलाया कि अरे अब सीखने गया था, क्या सीखा है, उसका ब्रेन वॉश कुछ हुआ है कि वैसे ही है। पुनः बुलाया हिरण्यकश्यपु, और प्रहलाद जी स्कूल में जाकर के फर्स्ट क्लास का ड्रामा किए थे। जो लोग गुरु लोग सिखाते थे सब धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में अच्छी तरह से सीख गए थे। प्रहलाद जी फटाफट सीख जाते थे, एक बार बोले सीख गए, तो गुरु लोग बड़े खुश थे कि महाराज हम पर बड़े खुश होंगे, हमको प्रोत्साहन देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे हमको। जब ही नेवता आया कि प्रहलाद क्या सिखा रहे, महाराज मत पूछिए, बहुत कुछ सिखा है प्रहलाद, तो अब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो गया है। अरे हम तो एक बार कहते हैं तुरंत याद कर लेता है। प्रहलाद का खूब गुण हुआ, गुणगान करने के बाद फिर हिरण्यकश्यपु पुनः प्रहलाद को जब पुनः लिया और जंगे पर बैठाया तो उसे याद आई कि हाय हाय मेरा बच्चा है, इतना मेरा प्यारा बच्चा है, गुरु लोग कितनी इसका प्रशंसा कर रहे हैं, इतना अच्छा चीज जान गया है, मैं व्यर्थ में उस समय गुस्सा कर दिया। बच्चे के सामने गुरु को इंसल्ट करना अच्छा नहीं है ना, तो अच्छा मैंने नहीं किया, बेचारा क्या सोचता होगा मेरा बच्चा। तो विभिन्न प्रकार का बात सोच रहा था, फिर कहा कि फिर भी पुत्र बताओ सबसे सर्वश्रेष्ठ, पहले अच्छा साधु वस्तु, अब कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री में सर्वश्रेष्ठ वस्तु तो क्या जानते हो बताओ, सर्वश्रेष्ठ संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। तो प्रहलाद जी प्रवचन करना शुरू किए, सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, और नवधा भक्ति का वर्णन करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे थे, अब हिरण्यकश्यपु को हीट फील होने लगा, और प्रहलाद महाराज जंगे पर बैठे थे, गर्म था, अब जला देगा प्रहलाद, इतना गुस्सा में उठाकर बैम पटक दिया नीचे, पटक दिया नीचे, और सा आंख लाल लाल हो गया, मानो अग्नि की वर्षा हो रही थी, रूंगटे खड़े हो गए। जब संड और अमर की तरफ देखा, उन लोगों का पेशाब पैखाना दोनों शुरू हो गया कि बाप रे बाप, ऐसा गुस्सा नहीं देखे थे। अब लगे कांपने, थरथराने लगे कि बताओ तुम लोग ये कहां से सिखा है, किसने सिखाया है, इसकी बुद्धि ऐसे कैसे मारी गई, तुम लोग नमक हराम हो, आखिर हो तो ब्राह्मण ही ना, खाते हो मेरा और गुणगान करते हो विष्णु का। कह के नहीं महाराज हम लोग ऐसा नहीं बताए हैं, तो किसने सिखाया। तो कहते हैं न मत्त प्रणीत न पर प्रणीत, न तो हमने सिखाया है और न तो आश्रम में कोई दूसरा आकर के। बात सही है, इन संड और अमर को नवधा भक्ति का ज्ञान कहां से आएगा। वो बात सही बेचारे बोल रहे थे, नमत्ता प्रणीत, हे महाराज हमने नहीं सिखाया है क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं, तो दूसरा सिखाया होगा। न परा प्रणीत, तो फिर कहां से सीखा है। तो कहते हैं अपने मां के गर्भ से ही सीख करके आया है, ये जन्म से ही ऐसा है, अब हम क्या कर सकते हैं महाराज। तो कहा जन्म से ऐसा है, तब तो लगता है और बदमाशी करेगा और खराब करेगा। तो हिरण्यकश्यपु दंड देने के लिए प्रयास किया, विभिन्न प्रकार का दंड दिया प्रहलाद को, पहाड़ पर से गिराया तो भगवान विष्णु रख लिए, हाथी के पैर तले दबाया तो हाथी का पैर कमल के फूल के समान हो गया। जो जो प्रयास किया सब कुछ किया, लेकिन जब नहीं मार पाया, जब थक गया, तो संड और अमर ने सोचा कि यह महाराज जिनसे पूरा पृथ्वी कांपता है, वे महाराज आज इतने असहाय हो गए हैं, हाय हाय बेचारे मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, तो अब क्या करना चाहिए, कोई उपाय इनके पास नहीं है। तो ये ब्राह्मण के बेटे फिर भी सोच रहे थे कि अभी इतना दिन पढ़ाए हैं तो कुछ गुरुदक्षिणा मिलना ही चाहिए, तो कहते हैं अंतिम बार प्रयास करेंगे। तो कहा कि देखिए महाराज, एक चांस और दे दीजिए हम लोगों को, एक चांस दीजिए, दो चांस हो गया इस बार नहीं, अभी ऐसा करेंगे हम इसको ले जाते हैं और बिल्कुल ताला बंद कर करके रखेंगे अंदर, तब तक से रखेंगे जब तक से हमारे पिताजी लौट ना आए, तीर्थ यात्रा में गए थे शुक्राचार्य, जब आ जाएंगे तो इसको रखेंगे गुरु जी की सेवा में, जब गुरु का सेवा करेगा तो सेवा से प्रेम उत्पन्न होगा, जब प्रेम उत्पन्न हो गया तो कुछ सीखेगा, तब तक से हम ले जा रहे हैं उसको सिखाते हैं। प्रहलाद जी गए पुनः और सही में जो जो पढ़ा रहे थे, प्रहलाद जी का आचरण बड़ा शुद्ध आचरण था, भद्र थे प्रहलाद महाराज, जेंटिलमैन थे, जेंटिलमैन किसी का हृदय जीत सकता है। कल ही विष्णु और हम गए थे, हमारे एक भक्त हैं राकेश झुंझुनू वाला, उनके ऑफिस में, मैं करीब एक साल के बाद गया था, तो पहले एक क्रिश्चियन लेडी थी उनकी सेक्रेटरी, तो हम जब जाते थे वो झंझना जाती थी, क्यों आ पाए हैं, अपॉइंटमेंट है क्या, हमारे सर बिजी हैं मीटिंग में हैं। मैं कहा कि अपने सर को बता दो कि हम आए हुए हैं, कहे हम बताएंगे अभी बैठे बैठिए, तो मुझे फोन करना पड़ता था, तब उनका सेक्रेटरी एक लेता था। एक गुजराती लेडी थी, नई आ गई थी, जाते ही आकर के हम लोगों का पैर छुआ, प्रणाम किया विष्णु का, पहले पहले उनके पास जाता है, बाद में मेरे पास आई, आए फिर बाद में पानी वानी पूछा, तो मैं कहा कि देखो क्या पैसा लगता है करने में, पहले भी एक थी सेक्रेटरी कैसे बात करती थी और अभी है, तो मैं इस लेडी को कहा कि माता जी ये मीठा बात बोलने पैसा तो नहीं लगता है, आप कितना मीठा अच्छा बात बोलती हो ये पूछ लिया, और आपके पहले वाली जो थी वो तो शेरनी थी, है उसका व्यवहार ही दूसरा था। तो थैंक यू बोला और कहा कि हमारे बॉस को भी बोल दीजिएगा, कहा बॉस को भी बोल देंगे कितना उनका है। तो मैं ये कह रहा था कि जो अच्छा बात करने से, अच्छा व्यवहार करने से असुर लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं, पैसा नहीं लगता है, वैष्णव को सीखना चाहिए। अरे बाहर के लोगों से दूर रहा, अपने में भी एक दूसरे के साथ में भी व्यवहार करना हो तो प्रेम से, इसलिए हम लोग एक दूसरे को प्रभु एड्रेस करते हैं, सम्मान के साथ में प्रभु कहते हैं, और प्रभु कहकर के डांट नहीं सकते, प्रभु आपने ऐसे किया नहीं, प्रभु जब कहे तो डांट नहीं सकते हो, तो प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो संड और अमर्क बदल सकते हैं प्रेम के व्यवहार से, तो टेम्पल की अथॉरिटी नहीं बदल सकते हैं क्या, भक्त लोग कहते हैं मंदिर वाले परेशान करते हैं हमको, अरे भी बदल जाएंगे है? संड और अमर्क शुक्राचार्य के बेटे थे वो बदल गए थे। तब एक दिन क्या हुआ कि संड अमर्क को सब्जी खरीदने जाना पड़ा, उस समय सब कुछ बड़ा महंगा हो रहा था, तो घर के लिए सब्जी टमाटर सब खरीदने जाना था, तो उन्होंने कहा कि देखो उस भागवत में वर्णन है कि गृह कार्येषु, घर के कुछ काम के लिए, तो गृह कार्य क्या होगा, पत्नी बोलेगी आते समय सब्जी लेते आना या मसाला लेते आना, चीनी लेते आना, कपड़ा लेते आना, तो गृह के कार्य के लिए बाहर जाना था। तो बहुत असुर बालक थे, उन असुर बालकों में से प्रहलाद जी को क्या बनाया, वो क्या बोलते हैं क्लास में जो मॉनिटर बनाया, हाँ प्रहलाद जी को मॉनिटर बनाया कि प्रहलाद देखो बेटा इन बच्चों का अच्छा से देखभाल करना, जो तुम सीखे हो ना वो सुंदर सुंदर ज्ञान इन लोगों को देना। गुरु जी बिल्कुल ठीक, जो मैं सिखा हूं वही ज्ञान दूंगा, जो नहीं सिखा हूं नहीं दूंगा, क्योंकि जो लोग एक सिखाए हैं इधर सुनकर इधर निकाल दिए हैं, और जो मां के गर्भ में सीखे थे वही असली ज्ञान सीखे थे। जब चले गए तब प्रहलाद जी, छठा अध्याय अब शुरू हो रहा है, प्रहलाद जी असुर बालकों को सिखाना शुरू किए, कौमार आचरित प्राग्नो धर्मान भागवतानी, और पूरा ज्ञान देने के बाद कहे तब तुम लोग खड़ा हो जाओ, बैठे बैठे हाथ पैर थक गया होगा, खड़ा हो जाओ, और उठाए करताल मृदंग लगा होने कीर्तन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे बोलो थोड़ा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो तो प्रहलाद महाराज खड़ा हो गए जैसे रोमपाद प्रभु खड़ा हो गए और लोग खड़ा हो गए हैं लेकिन वो नाच रहे थे खड़ा होकर के सब लोग नाच रहे थे कीर्तन कर रहे थे अब खूब हाइक हुआ कीर्तन का अब गुरु जी आए अपना गृह कार्य कर करके टमाटर ककड़ी सब खरीद करके लेकर के आए साथ में आए आए तो देख रहे हैं तो हरे कृष्ण मंदिर हो गया है सब नाच रहे हैं अब गुरुजी को अच्छा लगा अभी ताली बजाकर नाचने लगे सब लोग नाचना गाना शुरू कर दिए और प्रहलाद जी देखे गुरुजी भी नाच रहे हैं तो प्रहलाद जी को आनंद आ रहा था लेकिन और जितने असुर बालक थे गुरुजी जी खड़ा हो गए अब मजा गड़बड़ हो गया गुरुजी बेचारे नाच रहे थे वो भी लेकिन अब गड़बड़ हो गया अब यह जब बाद में सोचे इसका परिणाम संड और अमर कि कहीं यह पता चल जाए महाराज को तब क्या होगा तब क्या होगा तो संड और अमर प्रोएक्टिव हुए कहे कोई बच्चा जाकर महाराज को बता दे उसे पहले अच्छा होगा हम ही जाकर महाराज को बताएं कहीं बच्चा बताता होता कि प्रहलाद को छोड़ करके प्रहलाद को ये लोग क्या बनाकर गए मॉनिटर बनाकर गए सबको नचाया और गुरुजी लोग भी नाच रहे थे तब तो हुआ खटिया खड़ा बिस्तर गोल हुआ अपना है? तो ये लोग स्वयं गए और कहे महाराज क्षमा करना हमारे धृष्टता को ये प्रहलाद तो कैंसर हो गया आपके परिवार में यह सबको खत्म कर डालेगा आप कृपा करके इसको निकाल दीजिए स्कूल से पता कि क्यों क्या हुआ अरे मत पूछिए क्या हुआ पूरा कहानी बताए अब हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा के चलते हिरण्यकश्यपु अब सोचा कि अब तो जो कोई नहीं करना चाहता है उसे मुझे ही कर हां नहीं सॉरी जब प्रहलाद जी सिखा रहे थे शिक्षा दे रहे थे तो उसी समय असुर बालकों ने कहा रे पट्टा भैया तू तो हमारे एज का है हमारे साथ में पढ़ने तू आया ये तू इतना पंडित के समान बात कर रहा है तू कहां सीख लिया सब अरे हम लोग एक साथ में पढ़ते हैं आप जप मत करो सुनो और हमको नहीं लगता है कि शुक्राचार्य के बेटों को ऐसा कोई ज्ञान है और ना तो कोई ट्यूशन भी करता है ना तो वो लोग कोचिंग करते हैं तो तुम्हें यह ज्ञान कहां से आ गया भैया तब अपने गुरु को प्रणाम कर करके प्रहलाद जी पूरा बात बताए किस प्रकार से पिताजी जब गए थे तपस्या करने के लिए तो उस समय मैं अपने मां कयाधु के गर्भ में था और इंद्र डर करके मेरे मां को चुरा कर ले जा रहा था सौभाग्यवश हमारे गुरु जी आ गए नारद जी और इंद्र को समझाए मेरी मां गर्भवती थी और कोई दूसरा इंद्र उत्पन्न न हो पाए इसलिए या दूसरे बार अटेम्प्ट न करे इंद्र इसलिए मेरे गुरुजी मेरे मां को आश्रम लाए और वहीं पर गुरु के मुख से यह कथा सुना मैं मां के गर्भ में सुना तो कोई छात्र बोला रे तुम मां के गर्भ में सुना तुमको याद है तुम्हारे मैया को तो सब कुछ याद होगा कहा नहीं वो स्त्री स्वभाव है ना, वो भूल गई है, उसको याद नहीं, मुझे सब याद है। कहा अच्छा ऐसा बात है, और क्या तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया? कहा और क्या सिखाया? सभी वस्तुओं का एकमात्र सार यही है, सर्व पाप प्रणाशनम नामम संकीर्तनम जस्या सर्व पाप प्रणाशनम। सभी पाप को खत्म करने का एकमात्र तरीका है नाम संकीर्तन। तो कथा समाप्त हो गई भैया, अब खड़ा हो जाओ, नाम संकीर्तन। आप लोगों को नहीं, प्रहलाद जी बोल रहे थे, अब संकीर्तन करेंगे। तब संकीर्तन शुरू हुआ। एनीवे यहां से अब कट कर पेस्ट कर रहे हैं आगे। तब अब सन और अमर जाकर के जब महाराज को बोले हिरण्यकश्यपु को, तो हिरण्यकश्यपु बड़ा परेशान हुआ। वो सोचा कि अब तक से तो मैं दूसरों से प्रहलाद को मराने का प्रयास किया, प्रहलाद नहीं मरा, अब लगता है हमें ही मारना पड़ेगा। लेकिन प्रहलाद को न तो हिरण्यकश्यपु मारना चाहता था और न तो अपने पत्नी से मरवाना चाहता था, क्योंकि उस समय कल्चर था बहुत ऊंचा। आजकल के लोग अवैध संतान उत्पन्न करते हैं और पत्नी को बोलते हैं तुम एबॉर्शन करा लो, एक ऐसे बाप हैं। हिरण्यकश्यपु राक्षस था, वो गर्भ में नहीं मरवाया, जन्म लेने के बाद भी अपने हाथ से नहीं मारना चाहता था। लेकिन आजकल के दुष्ट लोग इंद्रिय तृप्ति के चलते कहते हैं मार डालो, कोई बात नहीं, कितना ये पाप कर रहे हैं इन लोगों को मालूम नहीं है। हिरण्यकश्यपु अपने हाथ से नहीं मारना चाहता था, इसलिए अपने पत्नी को कहा कि तुम मारो। वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, स्त्री धर्म के विरुद्ध कार्य है, माता धर्म के। कहते हैं पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती है। अरे मेरा नहीं, अन्य स्त्रियों का कहा, अन्य माताओं का, मैं स्त्री जाति के लिए माता के लिए कलंक बनूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। तो जिस हिरण्यकश्यपु के भय से सब लोग कांपते थे, कयाधु बेचारी क्या करे, जबरदस्ती ये पोटेशियम साइनाइड, एक बूंद भी नहीं, एक हलाहल जहर का पॉट पोटेशियम साइनाइड दिया और कहा ले जाकर दे दो अपने बेटे को पीने के लिए। जब प्रहलाद जी मां से मिलने जा रहे थे, मां बुलाई, जाने का उन्हें हौसला नहीं था, शक्ति नहीं था, बुलाई और हाथ में पोटेशियम साइनाइड का पॉट ली थी, वह हाथ कांप रहा था, चेहरा सूख गया था। जब प्रहलाद देखे तो भयभीत होकर मां ने, मां क्या बात है, क्या कारण है, आप क्यों दुखी हैं, दुख का कारण क्या है? कयाधु सब बात बताई। प्रहलाद ने कहा कि माता ये कैसे हो सकता है, माता अपने पुत्र को कभी विष नहीं दे सकती है, कभी विष नहीं दे सकती है, और यदि विष भी हो और मां स्पर्श कर दे तो अमृत हो जाएगा, तो आप इसके लिए चिंता क्यों करती है, आप जानती हैं इस बात को, लाइए दीजिए। और प्रहलाद जी लेकर के सहर्ष उसको पान कर लिए और सही में वो विष अमृत हो गया। सबको आश्चर्य हो गया, हिरण्यकश्यपु को आश्चर्य हो गया, तो कहा कि इससे नहीं काम चलेगा, अब मुझे ही डायरेक्ट काम करना पड़ेगा। जब कभी कभी ब्रह्मा जी नहीं होते हैं तो कृष्ण को ब्रह्मा बनना पड़ता है। तो हिरण्यकश्यपु बोला कि अब कोई नहीं कर सकता है, मुझे ही करना पड़ेगा। तब इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद जी को बुलाया और खूब गाली देना शुरू किया। अब तो गुस्सा था ही, और गुस्सा के बाद अब प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु कह रहा है, हे दुर्विनीत मंदात्मा कुलभेद अस्तब्धम अधम। कहते हैं हे दुर्विनीत, विनीत मतलब नम्र और दुर्विनीत मतलब हठीला, विशर्म दृष्ट, बिल्कुल उल्टा है। उसके मन में यह था वो बाहर आ रहा है, ये प्रहलाद का अपने लिए कह रहा है। हे दुर्विनीत, प्रहलाद जी बिल्कुल विनीत थे, नम्र थे, हां जुड़कर वहां पर खड़े थे, और हिरण्यकश्यपु कह रहा है तुम विनित नहीं हो, हे मंद, तुम मंद हो, फूल हो, लेकिन प्रहलाद जी मोस्ट इंटेलिजेंट थे। मंद आत्मा कुल भेद कर, तुम परिवार में परिवार को फोड़ने वाले हो, लेकिन परिवार को फोड़ने वाले नहीं, परिवार को जोड़ने वाले प्रहलाद जी थे। किससे? कृष्ण से। अपने मां को जोड़े, पिताजी को, सबको जोड़ने वाले थे। कहते अधम हे नीच, प्रहलाद जी अधम नहीं थे, उत्तम थे। अस्तब्ध हठीला, प्रहलाद जी बिल्कुल हठी नहीं थे, सत्यनिष्ठ थे प्रहलाद जी। कहते मत शासनम उद्धृत्य, तुम मेरे शासन का उल्लंघन किया है। कहते नैसे तुम अद्ध जम छमम, आज मैं तुमको जमराज के लोक में भेजूंगा। हालांकि बाप ये नहीं करता है, बैठिए बैठिए, प्रसाद नहीं है। बाप ऐसा नहीं करता है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। कहते हैं कि लेकिन प्रहलाद मुझे लो, आपने आप जा रहे हो माइक को ले जा रहे हो। तब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि प्रहलाद मुझे भैया एक बात समझ में नहीं आ रही, तू तो अब जमराज के पास जा रहा है, तू मरने वाला है, मरते मरते हमारे एक प्रश्न का उत्तर देकर जाओ। क्या बोलिए पिताजी, क्या प्रश्न है? कहा कि अरे मेरे जब मैं गुस्सा होता हूं, कुधस्य यस्य कंपन्ते त्रयोलोका सहेश्वरः, मैं जब गुस्सा करता हूं तो तीनों लोक और तीनों लोक के ईश्वर लोग कांपने लगते हैं। लेकिन तुम एक ऐसा है, पता नहीं तुम में कौन सा, तुम किस वस्तु के बने हो, किस आयरन स्टील के बने हो, है? तस्य मे अहिबतः मुग्धः शासनम किम बलोत्यगा। लेकिन तुम्हें पता नहीं ये बल कहां से आ रहा है, इतने बलवान हो गए हो कि तुम मुझे थोड़ा भी डरते नहीं हो, हंसते रहते हो। वास्तव में बात सही है। अब भक्त लोग क्या करेंगे, ऐसे मूर्खों को देखकर हंसते नहीं तो क्या करेंगे। और जब प्रहलाद जी हंस रहे थे तो हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आता था, तो वही कहता तुम किसके बल से हंस रहे हो, ये बल तुम्हें कहां से आ रहा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम मे भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशा परे अपरे अमी परे अपरे अमी स्थिर जंगमाजे ब्रह्मादयो जे वसम प्रणीता। हे पिताजी, हे राजन, ये बल का सोर्स पावर हाउस एक ही है, अन अलग अलग पावर हाउस नहीं है, मेरा ही बल नहीं। सवई बलम बलिनाम चा परेश, अरे जितना लोगों को आप जानते हैं और जिनको नहीं भी जानते, च परेश उन सब का स्थित जंगम कीड़े मकोड़े ब्रह्मादयो ब्रह्माशिवादी सब लोगों का पावर हाउस एक ही है और एक ही जगह से सब बल आ रहा है। और वह कौन है, थोड़ा मैं जानू तो कौन है। स ईश्वर काल उरु क्रमोशः, वो ईश्वर हैं जो प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं, जिनके बस में सब लोग हैं। अब इस प्रकार से भगवान का गुणगान किए तो हिरण्यकश्यपु खराब को लगा और सिर हिलाते हुए, मानो को हिरण्यकश्यपु पर असर पड़ रहा था प्रहलाद महाराज के प्रचार का, इसलिए सिर हिलाया कि मैं असर नहीं डालने चाहता हूं। तो कहते हैं वक्तम तुम मर्तु कामोसी यो अति मात्र विकथ से मूर्षणाम ही मदान मंदात्मा ननु सिहु विकलवा गृह। हे मूर्ख, अब मुझे तुम्हें तुम्हारे मृत्यु का लक्षण दिखाई पड़ रहा है कि मरने वाला बकवास खूब करते हैं। जो मर कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, मरने वाले खूब बकवास। व्यक्तम तुम मर्तु कामोसी, अब पूरा विश्वास हो गया तू मरने वाला है, इसलिए तू बकवास कर रहा है, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति इस प्रकार का बकवास करता है। और तुम कहते हो ईश्वर कोई है? यह त्वा मंदभाग्योक्तो मंद मदन्यो जगदीश्वर है, मद अन्यो जगदीश्वर, मुझसे अन्य कोई दूसरा जगदीश्वर है, कोई अन्य कोई भगवान है? यदि वह भगवान है जिसे तुम मानते हो, क्या कोई है क्या? प्रहलाद जी कहा हां बिल्कुल है। कहा कौन है? कहा भगवान, बताया ही आपको गुणगान किया, भूल गए क्या? अरे तो है, यदि है कसो यदि तो है कहां? कहते सब जगह है, सब जगह दिखा है, सब जगह है, दिखाई नहीं पड़ता है। कहते क्वासो यदि सर्वत्र, वो सब जगह है, कहां है, दिखाई नहीं पड़ता है। प्रहलाद जी कहते मुझे दिखाई पड़ता है। अच्छा तो खम्भे में दिखाई पड़ता है क्या? हां बिल्कुल। कहते हैं क्वासो यदि सर्वत्र, वह सब जगह है, कस्मात अस्तंभे न दृश्यते, तो इस खम्भे में दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? प्रहलाद जी कहते मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपको नहीं दिखाई पड़ा, दस योर प्रॉब्लम है, मेरा इसमें तकलीफ क्या है? अच्छा तो ऐसे बकवास करता है तो मैं देखता हूं। और अपना गला उठाया और खम्भे को बूम, बहुत आवाज आया, हुंकार आया। अमानो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जब यह पिलर टूटा और नरसिंह भगवान का हुंकार आया तो सुखदेव गोस्वामी भी गड़बड़ा गए, और गड़बड़ा करके सुखदेव गोस्वामी के मुख से यही एक श्लोक है पूरे अध्याय में जो आउट ऑफ टर्म आया हुआ है, लेकिन सत्य बात है। प्रहलाद जी कहते हैं, सॉरी सुखदेव जी कहते हैं, सत्यम विधातु निजभित्त भाषितम व्याप्ति च भूतेषु अखिलेश चात्मनम अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्वहम अस्तंभे समायाम न मृगम न मांसम। कहते सत्यम विधातु निजभित्त भाषितम, निज भृत अपने भृत अपने सेवक अपने भक्त के बात को सत्य करने के लिए भगवान आए। हिरण्यकश्यप ने चैलेंज किया कि भगवान तुम्हारे खम्भे में है, भगवान कहीं से आ सकते थे, खम्भे से आए प्रहलाद के बात को सत्य करने के लिए, चतुष्कुमारों को बात को सत्य करने के लिए, नारद जी के बात को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा के बात को सत्य करने के लिए। हरे कृष्णा,
आप उस पर क्यों रखते हो?
सत्यम विधातु निजभृत भाषितम, निजभृत अपने भक्तों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान आए। कहते व्याप्ति चूतेशु अखिलेशु चात्मना, भगवान सब जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, अखिलेशु च आत्मना समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्वहम, ये जो रूप इन्होंने धारण किया है, उद्वहम जिसको धारण किया है, जिस रूप को, ये कैसा रूप है? अद्भुत रूप है, न सुना था न देखा था, अदृश्यताम न देखा था, अति अद्भुत रूप उद्वहम, अत्यंत ही अद्भुत रूप धारण किए हैं। और कहां से? अस्तंभे सभायाम, अस्तंभे सभायाम, उस स्तंभ से निकले हुए हैं, सभा के स्तंभ से, न मृगम न मानुषम, न तो वे मृग हैं और न वे मनुष्य हैं। इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान की जय। जब भगवान नरसिंह आए और आकर के हिरण्यकश्यप को उठाए, और भगवान खेलने लगे, कभी पकड़ते कभी छोड़ते, सांप और चूहे के बीच में होता है, कभी हारते कभी हारने का प्रयास करते, हराने का प्रयास करते थे, जब भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी का बात को सत्य करना था, तो गोधूली का जब समय आया, भगवान डस्ट कहते हैं ना, डस्क डस्ट जो भी है, डस्क DUSK है, जब गोधूली का, जब गाय आती हैं शाम को चर करके, और जब धूल आता है उधर से, तो गोधूली कहते हैं, तो गोधूली के समय भगवान आए, सॉरी भगवान का आविर्भाव हुआ, थोड़ा खेले वोले। अब उसको ना तो दिन कहते हैं ना रात कहते हैं, भगवान वहां भी मार सकते थे, लेकिन भगवान चौपट पर लेकर के आए, मैं ब्रजहरी प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंदिर में चौकट लगवा दें, अच्छा काम होगा, ये शुभ काम होता है। यहां पर चाहे दीवार पर संगमरमर का चौकट लगाए, पहले के पुराने जितने मंदिर हैं सब मंदिरों में चौकट होता है। ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है। आजकल मॉडर्न आर्किटेक्ट सब कुछ खत्म कर देते हैं, चौकट नहीं होता है। चौकट बड़ा ऑस्पिशियस होता है, लोग आते हैं पहले चौकट प्रणाम करते हैं। आप जाइए नंदगांव बरसाना, आज भी चौकट है बड़ा बड़ा, चौकट लगाना चाहिए। इनफैक्ट कीप इन माइंड, वी विल डिस्कस इन आवर काउंसिल चौकट लगाने का। तो भगवान चौकट पर लेकर गए, यदि चौकट नहीं होता हिरण्यकश्यप का वध नहीं होता, याद रखो आप लोग, हैं ऑल ग्लोरी तो चौकट, वो चौकट पर भगवान लेकर गए, नहीं तो वो चौकट नहीं तो कहां मारते उसको। वो चौकट न घर है, अंदर है न बाहर है, लेकर गए और जंघे पर बैठाए, न ऊपर न नीचे, नाखून से तव कर कमल बरे नखमद भूत श्रृंगा दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा तव कर कमल बरे। भगवान का जो कर कमल है सर्वश्रेष्ठ है, तव कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगा, भगवान का हाथ भगवान का नाखून अद्भुत सौंदर्यमान थे, अद्भुत श्रृंगा, और उससे भगवान काटे। भगवान नरसिंह देव प्रथम सर्जन हुए थे जो सर्जरी किए थे हिरण्यकश्यपु का, है? प्रथम सर्जन हुए थे हिरण्यकश्यपु का सर्जरी किए। तव कर कमल बरे नखम दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा। तो इस प्रकार से भगवान हिरण्यकश्यपु को मारे, और जब भगवान मार लिए सब देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का स्तुति कर रहे हैं, सब लोग स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। और ब्रह्मा जी सबसे दुखी थे, ब्रह्मा जी उनको भय लग रहा था कि मेरे चलते हिरण्यकश्यपु ये लफड़ा किया इतना, कहीं भगवान का नजर हमारे ऊपर मत पड़ जाए, नहीं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा अभी। तो ब्रह्मा जी को बड़ा परेशानी था। तो ब्रह्मा जी गए माता लक्ष्मी के पास कि मैया आप ही मना सकती हो। तो लक्ष्मी जी कहे मेरा थोड़े बात मानेंगे। तो ब्रह्मा जी कहे कि नहीं माता, कोई ऐसा संसार में पति नहीं है जो पत्नी का बात नहीं मानता हो, जरूर आपका बात भगवान विष्णु मानेंगे, आप ही मनाने जाइए। और ब्रह्मा जी और सब देवता लक्ष्मी माता से प्रार्थना किए, तो लक्ष्मी माता गई भी प्रार्थना करने के लिए, लेकिन भगवान तुरंत ऐसा मुड़ी डुलाए, और लक्ष्मी जी भी डर गई, स्त्रियों में ऐसे ही डर होता है, और भगवान अपना डुलाए। तो लक्ष्मी भागते भागते आए कि नहीं बाबा, आज तक मैं इनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, ये कुछ अद्भुत रूप है, ये हमारे पर हमारे बस से बाहर का बात है। अब ब्रह्मा जी बड़े फेरे पड़े कि मैं कहां पड़ गया संकट में, क्या मैं कर दिया इस प्रकार से। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास गए, कहे कि बेटा प्रहलाद, ये भगवान आए हैं तुम्हारे चलते, अब अपना नहीं अपना छिपा रहे हैं कि मेरे चलते आए हैं, मैं भी उसमें भागी हूं, मैं आशीर्वाद नहीं देता उसको तो ऐसा नहीं होता। सत्यम विधातु, सभी भक्तों के बात को पूरा करने के लिए और भगवान प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा जी एक महान महाजन हैं, महान वैष्णव हैं, और ब्रह्मा जी की वैष्णवता देखिए। ब्रह्मा जी नहीं कहे कि मेरे चलते आए, तुम्हारे चलते आए हैं। भक्त लोग दूसरे को क्रेडिट देते हैं, भगवान खुश है भाई तुम्हारे चलते, मेरे चलते नहीं, मैं तो बल्कि अधम हूं, मेरे ने तो गड़बड़ कर दिया, तुम्हारे चलते भगवान आए हैं। इनफैक्ट बलि प्रसंग में भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटा भी, ब्रह्मा जी और शिव को दोनों को डांटा कि आप लोग मुफ्त में आशीर्वाद दे देते हो, मुझे परेशानी बाद में होती है, तो आज के बाद ऐसा आशीर्वाद कभी मत आप लोग देना। ब्रह्मा जी को भी कहा और शिव को भी कहा कि आप मुफ्त में आशीर्वाद देते हो, हिरण्यकश्यपु था वैसे किया, कंस उसने किया, रावण ने किया, क्या क्या किया। तब प्रहलाद महाराज सीधे जाकर के भगवान को सष्टांग प्रणाम किए। जब भगवान को सष्टांग प्रणाम किए तो भगवान तुरंत प्रहलाद महाराज को वैसे ही उठा लिए जिस प्रकार से गाय अपना बच्चा जब देती है, गाय जब बच्चा होता है आप लोग देखे हो या ना देखो, मैं देखा हूं। जब बच्चा देती है गाय, तो गाय पहला काम करती है अपने बच्चे को उठाती है, उसके जो अतनी पतरी होता है ना, वो चाटती है और उठाती है, वो देखना चाहती है कि बच्चा ठीक तो है ना, पहला काम करती है। जब बच्चा उठता है तब चाटती है। मैं तो है पढ़ा था सुना था, लेकिन इस बार मैं कानपुर गया तो सामने ही, तो मैं बोल कर रखा था ग्वाले को, तो मैं देखा, उठाई पहले और चाटी। तो भगवान नरसिंह देव ये पशुओं की एक एक, एक प्रवृत्ति है। एनीवे भगवान नरसिंह देव पहले उठाए प्रहलाद जी को, जो खड़े थे प्रणाम, सष्टांग प्रणाम किए थे, उनको उठाए और अपना हाथ रखे प्रहलाद जी के सिर पर, और उठा करके प्रहलाद जी को अपने जंघे पर बैठा करके और लगे चाटने। खूब चाटे भगवान, जिस प्रकार से गाय या शेर अपने बच्चे को चाटता है, और चाटते चाटते उनका गुस्सा खत्म हो गया। प्रहलाद जी को भगवान देखने लगे, प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान प्रसन्न थे, और प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी प्रहलाद जी को, भगवान का रूप भी नहीं देख रहे थे। और इस प्रकार से प्रहलाद जी भगवान का स्तुति करने लगे। तो नौवें अध्याय में भगवान के प्रहलाद जी का स्तुति का वर्णन है, और दसवां अध्याय जो है वह है राज्याभिषेक है। तो उस अध्याय में से नौवें अध्याय का यह श्लोक संख्या 44 है। अब हम लोग श्लोक पर आए हैं, ठीक है ना, अब श्लोक पर आए हैं। तो बहुत से प्रार्थना किए प्रहलाद जी नरसिंह भगवान को, और बतलाए कि किस प्रकार से व्यक्ति इस संसार में, कहां जा रहे हो, IYF, क्या नाम उसका, प्राणेश्वर आपका चेला, प्रसाद तो नहीं है ना, व्यवस्था करना, शाम का प्रसाद है, शाम का है ना, चलिए तो कहें आगे बढ़े कि नहीं, प्रसन्न साहब आगे बढ़े, पूरा करना है, चलिए अब तीर्थ पादा का आदेश हो गया। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि किस प्रकार से संसार में व्यक्ति अपने घर गृहस्थी के भरण पोषण में लगा रहता है, और उतना ही नहीं, उस व्यक्ति की जो 10 इंद्रियां हैं खींचती हैं चारों तरफ, आंख खींचता है अच्छी वस्तु को देखने के लिए, कान खींचता है कुछ सुनने के लिए, नाक खींचता है गंध लेने के लिए, त्वचा खींचता है आलिंगन करने के लिए, जीवा खींचता है स्वाद लेने के लिए, हाथ जाता है वह काम करने के लिए जो ज्ञान इंद्रिय चाहती है, पैर जाता है, इस प्रकार से 10 इंद्रियां संसारिक व्यक्तियों को खींचता रहता है। उस व्यक्ति का वही गति होता है जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को 10 पत्नियां हो और सब पत्नी अपने को संतुष्ट करने के लिए उसे अपने महल में बुला रही हो, उस व्यक्ति का जैसा गति होता है। हे भगवान, संसार में सबकी वैसे ही गति हो रही है, सब लोग वैसे ही हैं। तो मानो मैं बहुत कुछ काट रहा हूं, श्लोक 42 ले रहा हूं, 41 श्लोक छोड़ दिया। प्रहलाद महाराज का प्रार्थना है, कहा कि 7 दिन तक कथा हुआ था तो भी मैं संतुष्ट नहीं था। प्रहलाद महाराज का, बलि महाराज का चरित्र बड़ा ही पावन चरित्र है, सुनना चाहिए, कभी भागवत सप्ताह होना चाहिए प्रहलाद महाराज के चरित्र पर, तो बड़ा अच्छा होगा। तो मानो भगवान कहते हैं कि तब कैसे लोगों का कल्याण होगा, तो कहते हैं को नत्रते अखिल गुरु भगवन प्रयास उत्तारणस्य भव भव संभव लोप हेतो मूढ़े सवई मद अनुग्रह आर्त बंधो किम तेन ते प्रियजना अनुसेवताम नः। कहते को अन्वत्र ते अखिल गुरु भगवन प्रयास, कहते हैं हे भगवान, ये पूरा सृष्टि स्थिति प्रलय सब आपसे होता है, इस सृष्टि स्थिति प्रलय में लोग रचे पचे हुए हैं जो आपके द्वारा दिया गया है, यदि किसी को पार होना है तो पार हो सकता है, कैसे, संसार को पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कर्णधार देह तो नौका है लेकिन नौका चलाने वाला चाहिए, वो गुरु चाहिए। तो भगवान कहते हैं गुरु चाहिए, तो प्रहलाद जी कहते हैं गुरु का आंख खोजने जाऊं। ते अखिल गुरु, अरे आप संसार के गुरु हैं। वंदे कृष्णा जगत गुरु, आप संसार के गुरु हैं। भगवान कहते मुझसे नहीं होगा, कहते भगवान प्रयास, हे भगवान आपसे ही होगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा होनी चाहिए। उत्तारणे यस्य, इन लोगों का उत्तरण होगा, ये लोग भवसागर से पार हो सकते हैं, वैतरणी पार हो सकते हैं। भवसंभव लोप हेतु हो, एकमात्र कारण है इन लोगों को पार होने का तो हे प्रभु केवल आप हैं। मूढ़े सुवई मद अनुग्रह आर्त बंधो, क्या सुंदर बात है, आर्त बंधो, हे कृष्ण आप आर्त बंधो हैं। एक एक शब्दों का मीनिंग है, आर्त बंधो हैं जिनका कोई नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ, उसमें से कहें आर्त, कहते हैं आर्त बंधो, आप आर्त बंधो हैं। किमतेन ते प्रिय जना, ये आपके ही हैं प्रभु, आपके ही प्रिय हैं, ये भूल गए हैं भटक गए हैं। और इन लोगों का या तो आप कर सकते हैं और नहीं तो प्रिय जना, आपके जो प्रिय जन हैं साधु महात्मा लोग हैं वो लोग कर सकते हैं। या दूसरा शब्द, ये आपके ही प्रिय हैं, ये लोग हो सकते हैं। कैसे, अनुसोयतान, हाँ यदि आपका और साधुओं का ये लोग सेवा करना शुरू करें। तो संसार सागर से पार किसी को करना है तो गुरु और वैष्णव और कृष्ण का जो सेवा करेगा वही संसार सागर से पार हो सकता है। माया में ताम तरंति ते, मामे कैसे है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वो जे प्रबदंते माया में ताम तरंति ते। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा काम नहीं है, मैं करूंगा तो ठीक नहीं होगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं नए उदिजे पर दुरत वैतरण यास तो कहते हैं कि नहीं भगवान आप ही कर सकते हो। तो माने भगवान कहते हैं कि आप इन लोगों का चिंता क्यों प्रहलाद करते हो, अपना क्यों नहीं चिंता करते हो। अरे भैया कहो मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं, तुम चलो हमारे साथ में। भगवान कहते हैं कि न एव उद्विजे पर दुरत्यावैतरण य, हे भगवान संसार के दुखों से मैं उद्विग्न नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं। तो मान भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें भय नहीं है कि संसार में रहना चाहते हो, तुम वैतरणी पार नहीं करना चाहते हो। कहते मुझे वो भी पार करने की जरूरत नहीं है, मैं संसार में ही रहना चाहता हूं। तो मान भगवान कहते हैं संसार में इतना दुख है तू क्या करेगा संसार में। कहते हैं दुख है, कौन कहता है संसार में दुख है, तो कैसे दुख नहीं है। कह नहीं हमारे तो सुख है, कैसे सुख है। तो कहते हैं तदवीर यगायन महा अमृत मग्न चेत, अरे इसलिए मुझे सुख है क्योंकि तदवीर गायन आपका गुणानुवाद निरंतर मैं करता रहता हूं, आपका गुणानुवाद मेरे लिए है। वो कैसा है, महाअमृत मग्न चित। दो प्रकार का अमृत होता है, एक स्वर्ग में मिलता है वह अमृत होता है और दूसरा होता है ब्रजामृत कथामृत नामामृत, ये अमृत है। जो संसारिक अमृत है, जो स्वर्ग का अमृत है वह लिमिटेड है, लेकिन जो कथामृत है नामामृत है वो अनलिमिटेड है। जो स्वर्ग का अमृत है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य साधन करना पड़ता है, बहुत बहुत पुण्य करोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अमृत प्राप्त करोगे। लेकिन कथामृत के लिए नामामृत के लिए कोई बड़ा प्रयोजन नहीं, सिंपल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वर्ग का जो अमृत है वो इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देता है, लेकिन जो कथामृत है, नामामृत है, वो इंद्रिय तृप्ति का दमन करता है, इंद्रिय तृप्ति को खत्म कर देता है। इस प्रकार से स्वर के अमृत और कथामृत में बहुत से तुलनात्मक गुणों का वर्णन किया गया है। कहते हैं मैं तो उसी में मग्न चित, मग्न, मग्न शब्द का अर्थ जी गोस्वामी बतलाते हैं मन ग, जहां मन चला गया हो उसे मग्न कहते हैं। जब मन वहां चला जाएगा तो इंद्रियां अवश्य जाएगी, और इंद्रियों के द्वारा, इसलिए मन को भी कभी कोई इंद्रिय का मनोस्थान इंद्रियाणी, इंद्रियों का मुखिया है मन। इसे कहते हैं मग्न चित, मग्न और चित। प्रभुपाद जी कहते हैं चित का मतलब होता है मन, बुद्धि, कॉन्शियसनेस एंड हार्ट। तो मग्न चित, ये तीनों उसमें लगा हुआ है। किसमें? मन भी लगा हुआ है, बुद्धि भी लगा हुआ है, चित भी लगा हुआ है, और हमारा कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियस भी हो गए हैं। किससे? किसमें? तदवीर गायन, आपका गुणगान करने में, आपका कथा सुनने में। तो मानो कर्तव्य इन लोग क्यों नहीं करते हैं और संसार वाले कहते हैं क्यों नहीं करते हैं? तब कहते हैं सोचे, मैं अपने लिए चिंता नहीं करता हूं, मैं केवल सोच रहा हूं तो इन लोगों के लिए। सोचे मतलब दया, ये दया होती है वो परम वैष्णवों में होती है। भागवतम के एकादश स्कंद में तीन प्रकार के वैष्णवों का वर्णन किया गया, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। हालांकि प्रहलाद महाराज उत्तम अधिकारी हैं, फिर भी मध्यम अधिकारी के समान ये बात कर रहे हैं। मध्यम अधिकारी का ये गुण है ईश्वरे तद अधिनेशु बालेशेषु दिशसु च प्रेममयति कृपा अपेक्षा या करोति समित्तमा। कृपा, कृपा, और यहां पर सोचे शब्द आया हुआ है दया। तो दया किसे कहते हैं? विराग गोस्वामी कहते हैं दया किसे कहते हैं? सत्सु न अत्र ततो दया। सत्सु, सत मतलब भगवान, सत्सु मतलब भगवान से संबंधित, भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का गुण, जिसका संबंध भगवान के नाम लीला गुण से हो गया हो, न अत्र दूसरों वस्तुओं से नहीं, ततो दया, उसी में दया हो सकती है। दयावान संसार में वही हो सकता है जिसका मग्न चित, कहां पर? तदवीर्य गायन, जिसका मन, इंद्रियां, सब कुछ भगवान में लगा। सत्सु न यत्र ततो दया, अन्यत्र मन नहीं लगा हो, अन्यत्र इंद्रियां नहीं लगी हो, केवल कृष्ण में लगा हो, वही दयालु होता है। इति वचनात् इदम च भक्ति लक्षणम इति प्रकटयन आह सोचे इति। तो सोचे, कदे मैं सोच रहा हूं इन लोगों के विषय में। ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ, विमुख चेतसा, संसार में सब लोग कैसे हैं? 36 का आंकड़ा हो गया है, 36 समझते हो ना, 3 और 6 होना चाहिए, 63 सामने सामने, 6 और 3, लेकिन 36 हो गया। कहते हैं विमुख, विमुख हो गए हैं, चेतसः, क्यों? कारण क्या है? इंद्रियार्थः, इंद्रियों के चलते, इंद्रियों तृप्ति के चलते। और माया सुखाया भरम उद्वहतो विमुद्धान, प्रभुपाद जी बार बार इसको कोट करते थे, माया सुखाया, चपल सुखल वाला गिरे, चपल सुख के चलते, माया के चलते, माया के सुख में बढ़ करके, भरम उद्वहतो, भरण करते हैं, ढोते हैं गद्दे के समान, हैं, उठाते हैं, उद्वहता, भरम उद्वहता, भार उठाते हैं, सुबह से रात तक कठिन परिश्रम करते हैं, शीत आतप बात वरिषण ए दिन जामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपरण दुर्जन चपल सुख लवला गिरे। तो माया सुखाया या चपल सुखाया, भरम उद्वहतो विमुद्धा, ये लोग मूर्ख लोग हैं। तब कहते हैं मानो अपने गुरु जी को भी यहां देखते हुए कहते हैं प्रायेण देव मनो यह। तो मानो भगवान कहते हैं प्रहलाद चिंता मत करो, इन लोगों के लिए बहुत साधु ऋषि लोग हैं, बहुत मुनि लोग हैं, वो प्रचार करेंगे, उनको लेकर के आए, तुम तो चलो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि नहीं भगवान, मैं देख रहा हूं प्रायेण देव मुनय स्वयुक्त काम। हे देव, हे प्रभु, हे नरसिंह भगवान, प्रायेण देव मुनय, मानो नाराज जी कहते हैं बेटा हमको भी उसमें डाल दिया क्या? अरे मैंने तेरे मां को बताया तब तुम सीखा है आज ज्ञान, मैं प्रचार किया हूं। प्रहलाद जी कहते हैं इसके अंदर प्रायेण, प्राय सब लोग नहीं, कहते हैं प्रायेण 99% 100% नहीं, 1% नाराज जी नहीं हुए। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्त काम, स्वविमुक्त काम, अपने मुक्ति में लगे रहते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं भजनानंदी और एक होते हैं गोष्ठानंदी। जो भजनानंदी होते हैं वो भजन करना केवल चाहते हैं, अपने मुक्ति चाहते हैं, और जो गोष्ठानंदी होते हैं वो अपने में नहीं लगते हैं, वो अन्य के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। भजनानंदी का यहां पर गुण बताया गया, मौनम चरंति भजने न परार्थ निष्ठा, अपने कामना के लिए स्वार्थ भाव से वे लोग मौनम चरंति, मौन भाव से विचरण करते रहते हैं। न परार्थ निष्ठा, दूसरे का थोड़ा भी परवाह नहीं करते हैं, संसार में जो दुखित हैं उन लोगों का। कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट, ऐसे मुनियों के लिए प्रभुपाद जी नहीं किए। लेट अस टेक लेसन फ्रॉम अस, ये श्लोक डायरेक्टली हम लोगों के लिए है कि हम लोगों का धर्म क्या है। हम लोगों का धर्म है प्रचार करना, न कि ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर के रहना। ब्रह्मचारी आश्रम सोने के लिए, मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि संध्या आरती में नहीं जाएंगे, बहुत माता जी लोग आती हैं, बहुत लोग रहते हैं, संध्या आरती नहीं जाएंगे, गीता क्लास में आश्रम में रहेंगे, प्रजल्प करेंगे, वो ठीक है। एक बार ऐसे ही किसी भक्त ने कहा कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, क्यों? कि बहुत लेडीज हैं। प्रभु तब तुम जंगल में चले जाओ, तुम आश्रम मत रहो, जंगल में जाओ, आश्रम में क्यों रहोगे? मैं देखता हूं प्रैक्टिकली संध्या आरती और गीता क्लास प्राय नील होते जा रहा है, और क्या एक्सक्यूज है? बहुत भीड़ भड़का होता है। तो मौनम चरंती, प्रहलाद मां कंडेम करते हैं। एक समय लोकनाथ स्वामी नए भक्त थे, गिरा स्वामी प्रेसिडेंट थे, तो आश्रम में थे। गिरा स्वामी पूछे कि आप यहां क्या कर रहे हो, प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहा कि मैं कुछ अभी पढ़ा नहीं हूं। पढ़ रहे थे, प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? कहा मैं कुछ सीख रहा हूं। कहा कोई जरूरत नहीं है, जो आपने कथा में सुना है वही बात जाकर के बाहर लोगों से बताओ। जो कथा में डेली सुनते हो ना वही बताओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड था उन दिनों। हम लोग संडे, मतलब उन दिनों बहुत बड़ा फेस्टिवल था पुराने जमाने में, हम स्केड्यूल बनाते थे कौन व्यक्ति कहां प्रचार करेगा, कहां कहां क्या करेंगे। वो सेकेंड फ्लोर बीआई का लाइब्रेरी है, वो सत्संग हाल हुआ होता था। मैं टेम्पल कमांडर, राधा कृष्ण असिस्टेंट, सुबह 3 बजे से उठकर 9 बजे तक मौत था। संडे हमारे लिए मौत था, एक सेकेंड चैन नहीं था। गोपाल कृष्ण महाराज गिरा प्रधान थे, क्यों? वो लोग भी सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठते थे प्राय लोग। शाम को तो जरूर ही दर्शन, दर्शन का लोगों को लेकर जाओ दर्शन कराने के लिए। एक दिन भूषण कृष्ण गोपेश्वर हमको बैठा दिए उधर, भूषण कृष्ण आए इधर, तो मुझे याद आ रहा था पुराना दिन। हम लोग बाहर जाकर किताब बांटते थे, लोगों बैठकर प्रचार करते थे। ये जरूरी है, प्रहलाद महाराज का प्रतिनिधि होना यही है, प्रचार करो, न कि आश्रम में प्रजल्प करो, न मौनम चरंती। ये सब इगरी डिग्री काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? ये प्रचार काम करेगा। इस कान में एक लहर चल गया है, एक समय लहर था प्रचार, प्रचार, प्रीचिंग इन सेंस। अब हो गया है, पहले हम भक्ति शास्त्री कर लें, भक्ति वैभव कर लें, ये कर लें, वो ठीक है, लेकिन प्रचार होना चाहिए। स्वार्थ में नहीं रहो, नहीं तो क्या होगा, ये प्रचार धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जो प्रभुपाद जी दिए हैं वो नहीं रह जाएगा, गौड़ीय मठ हम लोग हो जाएंगे, हम भजनानंदी हो जाएंगे, गोष्ठानंदी नहीं रह जाएंगे। गौड़ीय मठ के साधु लोग बहुत कुछ जानते हैं शास्त्र को, लेकिन प्रचार जो प्रभुपाद जी किए, प्रभुपाद जी बावड़ी में जाकर प्रचार किए अमेरिका में। किसी ने पूछा कि आप शहरों में क्यों, कहें कि आजकल असली जंगल यही शहर है, कि सब शेर खूंखार लोग शहर में रहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बड़े बड़े शहरों में सिडनी, मेलबर्न, न्यूयॉर्क, बॉम्बे, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में पहले स्थापित कराए कृष्ण भावना को, पहले शहरों में। क्या प्रभुपाद जी मायापुर बिल्ड नहीं करा सकते थे? पहले बॉम्बे को बनवाए, अपने जीवन काल में मायापुर को नहीं बनवाए, पहले बॉम्बे को बनवाए। हम लोग तो पेड़ के नीचे भजन कर सकते हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग की जरूरत क्या है? ये बिल्डिंग प्रचार के लिए है, न कि हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है। इसलिए हम इस सभी भक्तों को इस श्लोक से प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या ताए देव मुनय, प्रहलाद जी कंडेम्ड कर रहे हैं उन भजनानंदियों को जो स्वविमुक्त कामा, जो अपने उनकी कामना है ज्ञान प्राप्त करने का। मौनम चरन्ति भजने न परार्थ निष्ठा, दूसरे के लिए निष्ठा नहीं है। पता न एतान विहाय, मानो प्रहलाद जी रो रहे हैं कि हे भगवान मैं इन लोगों को छोड़ करके, न एतान विहाय, न मतलब नहीं, एतान मतलब इन लोगों को, विहाय मतलब छोड़ करके, मैं इन लोगों को छोड़ करके जो कैसे हैं कृपणा, जो कृपण है, यहां पर कृपणा का अर्थ होता है जो चल नहीं सकते हैं, कृपणा का मतलब होता है माइजर, लेकिन यहां पर कृपण का मतलब जो असहाय है, असहाय। नय एतान विहाय कृपणा विमुक्ष एको हो, मैं इन कृपणों को छोड़ करके न नहीं बी विशेष रूप पे मुक्ष मुक्ति एको एकांत, मैं अकेला मुक्ति नहीं चाहता हूं, यदि जाऊंगा तो होलसेल सबके साथ जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। न अन्य तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्थित, हे भगवान मैं देख रहा हूं संसार में आपके अलावा और कोई नहीं है जो इन लोगों का कल्याण कर सकता है, आपकी भक्ति ही कल्याण कर सकती है। तो कृष्ण का भक्ति जो है प्रभुपाद जी के पास है, प्रभुपाद जी हम लोगों को दिए हैं, हम लोग पोस्टमैन हैं, पोस्टमैन का काम है पोस्ट को डिलीवर करना। आजकल हापुस आम पोस्ट से भेजते हैं और पोस्टमैन खोलकर खाना शुरू करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उसका काम है डिलीवर करना। तो ये भागवत जो है हापुस आम है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम चुहा अमृत दर संतम विवत भागवतम रसमालयम मुहूर और उसका भूभाग, इसको दो दूसरों को, गो आउट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, वी आर नॉट गोइंग आउट, कम आउट ऑफ द आश्रम एंड प्रीच, चैंट एंड डांस। बहुत लोग कहते हैं, हम लोग पहले हरिनाम जाते थे डाउन टाउन, कहते आजकल हरे कृष्ण में पता नहीं क्या हो गया, हरिनाम नहीं करते हैं। जब लोग आते हैं मंदिर में देखते हैं कि भक्त लोग नाचते हैं गाते हैं, वो लोग भी नाचते हैं गाते हैं, अंदर ही मार्ग जैसे हरे कृष्ण टेम्पल फर्स्ट क्लास चैंटिंग डांसिंग। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटी फोल्डेड हैंड, प्लीज कम फॉर संध्या आरती, लेट अस स्टार्ट गीता क्लास। वी यूज टू हैव अर्लियर हिंदी गीता क्लास एंड इंग्लिश गीता क्लास सेपरेटली, सो लेट अस स्टार्ट गीता क्लास, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। दिस इज नॉट टू कंडेम, बट दिस टू रिमाइंड द डिजायर ऑफ प्रहलाद महाराज, डिजायर ऑफ प्रभुपाद। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, प्रहलाद महाराज की इच्छा है। न सौ विमुक्त काम, विमुक्त कामी मत बनो, कामी मत बनो, कामी व्यक्ति सुखी कभी नहीं हो सकता है। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, अशांत रहोगे। कृष्ण भक्त निश काम अतएव अशांत, कृष्ण भक्त अशांति में भी शांति को प्राप्त करता है, लेकिन जो भजनानंदी हैं वो शांति में भी अशांति को महसूस करते हैं। यदि अशांति में भी शांति महसूस करना है तो गेट आउट एंड प्रीच, प्रचार करो, जिससे भी मिलो। मैं देखता हूं वो जप कराते हैं, हमारे भगत जी कहां है, यहां पर है, हां देखो, इन ओल्ड एज वन एट यंग कैन डू, कुछ लोगों से जप कराते हैं, होली नेम इज युग धर्म, लेट अस चैंट एंड मेक पीपुल चैंट, लेट अस गेट आउट ऑफ द आश्रम मेंटेलिटी, लेट अस गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, लेट अस प्रीच, गो आउट एंड प्रीच। गोइंग डाउन टाउन टू लाइफ मर्सी प्रीचर एंड कमिंग लाइक हेल, क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन वन एंड हाफ टू आवर जाना टू आवर आना, बैग टूट जाता है, बट डिवोटीज आर डूइंग। Go to school, colleges. If you are not going for an ashram, then honestly come out and preach. Chant and dance. Attend Sandhya Arati, Gita class. And that will be representing Prahlad Maharaj. That will please Prahlad Maharaj. That will please Lord Chaitanya. That will please Srila Prabhupada. And thus we all will preach. Thank you very much. Prahlad Maharaj ki jai. Narasimha Bhagavan ki jai. Any question? सब थक गए हैं कोई क्वेश्चन नहीं है सब सेटिस्फाई हो गए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग फॉर टू आवर्स थैंक यू हरे कृष्णा